श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 6। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतेन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। भगवान इस श्लोक में हमारा अगला शरीर का देहांतरण कैसा होता है, किस सिद्धांत के अनुसार होता है, उसको समझा रहे हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और इस चीज में हमें स्मरण रहना चाहिए कि जीवन में हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं उसके अनुसार हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना होता है उस पे एक छाप पड़ती जाती है और उसी प्रकार के भाव हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये जो मृत्यु के समय का भाव है वो वही स्मरण होगा जिसका अनुशीलन हमने पूरा जीवन किया है। तात्पर्य यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। दिव्य स्वभाव आप लोग समझते होंगे सच्चिदानंद स्वरूप। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है, कुछ लोग इस प्रकार से प्रवचन करते हैं, यथा मत तथा पथ, जैसा जिसका मत हो वैसा ही वो पथ स्वीकार कर ले और वो वहीं पहुंच जाएगा। अद्भुत बात यह है कि वो ये नहीं बताते कि हम कहां पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट रूप से भगवद गीता से हमें समझ में आ रहा है कि जैसा जैसा भाव होगा वैसा वैसा ही व्यक्ति को गति प्राप्त होगी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि उनका स्मरण करेगा तो उनकी प्राप्ति होगी और अन्यथा जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उसको वैसी ही प्राप्ति होगी। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देह अंतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद इस कथा को आप नहीं जानते होंगे। भरत महाराज भगवान ऋषभदेव के बेटे थे, सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे और वो महाभागवत थे, बहुत बड़े भक्त थे और पूरे विश्व पे वो राज किए, कई लाखों साल तक उन्होंने राज्य किया। और उसके बाद भगवान में अपने चित्त को एकनिष्ठ भाव से लगाने के लिए वो जंगल चले गए थे और जंगल में बड़े ही उच्च स्तर का वो भजन कर रहे थे, भाव के स्तर पे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी में वो भजन कर रहे थे, तो नदी में अपना जो भी क्रिया करने के लिए आए होंगे, नदी से जल लेने के लिए आए थे, तो देखा कि एक हिरणी है जो कि गर्भवती थी, वो सिंह वो पानी पीने के लिए आई और सिंह का दहाड़ सुन करके उसका गर्भपात हो गया और जो बच्चा था वो पानी में बहने लगा, तो वो और उसके दुख की वजह से वो हिरणी मर गई। तो उस छोटे से हिरण के बच्चे को वो लेके आए अपने पास और उसको ध्यान रखने लगे और उसके चक्कर में वो अपना भजन भूल गए। और एक दिन जब वो हिरण का बच्चा कहीं दूर चला गया था तो उसका ही चिंतन कर रहे थे और उसको चिंतन करते करते वो गिरे और गिर करके उनके शरीर छूट गया। जब उनका शरीर छूट रहा था तब वो हिरण उनके पास में आके खड़ा हो गया था और आसक्ति के कारण उस हिरण के प्रति जो उनकी आसक्ति थी इस कारण से हिरण का स्मरण हुआ और अगले जन्म में उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन हिरण के शरीर में भी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही और बड़े ही सूखे पत्ते खा करके और बुलाह आश्रम यानी कि एक साधुओं का स्थल है, तपस्थली है, वहां पर जाकर रहे और फिर उन्हें हिरण का शरीर त्याग दिया और फिर से उनको मानव का शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वहां से भगवान के धाम चले गए। तो अभी देख सकते हैं कि छोटी सी गलती भी आध्यात्मिक पथ में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। लेकिन पॉइंट यही है कि हमें हमारा जो क्रियाएं हैं वो हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमारा भाव हमारी चेतना प्रभावित होती है और जैसी चेतना हमारी होगी मृत्यु के समय उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। वैसे आपको घबराने की बात ये नहीं, घबराना नहीं चाहिए। जो भी हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो हमारे लिए शाश्वत क्रेडिट हो जाता है। फिर भी साधक को, भक्त को बहुत सतर्क रहना चाहिए। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। बहुत सुंदर है ये जो मानव जीवन है, ये एक पुल की तरह है। ये घर बनाने के लिए नहीं होते हैं पुल, पुल का उद्देश्य होता है नदी को क्रॉस करना। उसी तरह मानव जीवन स्पेसिफिकली है ताकि हम जन्म मृत्यु के रूपी जो चक्र है उसको, उस भव सागर को हम पार कर जाएं, और उसके लिए हमें इसी से मैं आज से ही अपने जीवन को अनुशासित करने की आवश्यकता है। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। सत्वगुणी होने का अर्थ है सही समय पर उठना, स्पेशली सुबह 4 बजे उठना ताकि हम सतोगुण का संग कर सकें, और उस समय हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवान का प्रसाद खाना। एसेंशियली भक्ति की साधना, भक्ति की क्रियाओं का पालन करने से हमारे चित्त में सतोगुण की वृद्धि होती है और इससे कृष्ण का स्मरण भी सहज रूप से होता है। रजगुणी तमोगुणी व्यक्ति भी भक्ति का आश्रय लेकर सतोगुण में स्थित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सतोगुण में होगा तभी भक्ति कर सकता है, लेकिन जितना हम सतोगुणी जीवन जिएंगे उतना ही हम लोग दृढ़ता से भक्ति का पालन कर पाएंगे। रजगुणी और तमोगुणी जीवन ये व्यतीत करने से व्यक्ति भक्ति में स्थिर नहीं रह पाता है। इससे उसे कृष्ण के देव स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, यानी कि सतोगुणी जीवन और कृष्ण का स्मरण। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसके द्वारा चेतना की सर्वश्रेष्ठ अधिक शुद्धि होती है और रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है और हमारा चित्त भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण।